पद्म पुराण की कथा के प्रसंग में पूज्यपाद श्री रामदास जी महाराज के चरणों में वंदना करते हुए आप सभी माताओं के चरणों में माताओं के हृदय स्थित उस परमात्मा को संबोधित करते हुए यह प्रसन्नता हो रही है कि पवित्रता कितनी मोटी वस्तु है। पवित्रता बहुत ही बड़ी वस्तु है। पवित्रता यदि हो तो राक्षस भूत प्रेत यहाँ तक कि देवता भी पवित्र व्यक्ति के भय से कांपते हैं, क्योंकि यदि कोई दुष्कर्म करते हैं तो अपवित्र व्यक्ति के साथ ही दुष्कर्म कर पाते हैं, पवित्र व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते हैं। यहाँ सामने लिखा है पवित्रता ये सौथी मोटी शक्ति छे, तमाम वस्तु एनाथी डरे छे, तो तमाम मां ईश्वर पण डरे छे। यह स्थिति सबकी है, जबकि देवता और दैत्यों का परस्पर युद्ध चल रहा था, युद्ध में दैत्य परास्त हो गए, तो दैत्यों की माता दिति जब सोचा कि हमारे पुत्र परास्त हुए, तो उसने देवताओं के राजा इंद्र से बदला लेने के लिए सोचा कि हमारा कोई ऐसा पुत्र हो जो कि इंद्र को मारे, क्योंकि टिट फॉर टैट, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा करना चाहिए। जो खल दंड देहु नहीं तोरा, भ्रष्ट हो ही श्रुति मार्ग मोरा। तो दिति ने ऐसा सोचा कि इंद्र ने हमारे पुत्रों दैत्यों को परेशान किया है, ये लोग अमृत पी करके देवता और अमर हो गए और हमारे सभी पुत्रों को मारा, हैरान किया, इसलिए हमारा एक ऐसा पुत्र क्यों न हो जो कि सबको दंडित करे। इस उद्देश्य से यह भावना रख करके कश्यप ऋषि से उन्होंने पूछा कि प्रभु आप हमें कोई इस तरह का व्रत बतलावें जिससे कि तेजस्वी पुत्र पैदा हो, क्योंकि यज्ञ के द्वारा अनुष्ठान के द्वारा व्यक्ति जो चाहता है वो अभिप्सित इच्छित वस्तु से प्राप्त होती है। कश्यप जी ने बतलाया दिति को व्रत कि देखो एक ऐसा नियम है व्रत का जिसमें कृच्छ चांद्रायण व्रत होता है। कृच्छ चांद्रायण व्रत में ऐसा होता है कि चंद्रमा की कला जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे ग्रास बढ़ाया जाता है। प्रतिपदा एकम को एक ग्रास, द्वितीया को दो ग्रास, तृतीया को तीन ग्रास। ग्रास का मतलब ज्यादा नहीं, आंवला के बराबर ग्रास लेने का विधान है, वही खा करके रहना है। इसको कृच्छ चांद्रायण व्रत कहते हैं। जैसे जैसे चंद्रमा की कला बढ़ेगी वैसे वैसे ग्रास बढ़ते जाएगा, चतुर्दशी पूर्णिमा तक पंचदश 15 ग्रास तक जाएगा, फिर अमावस्या को कुछ नहीं खाना है क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा दिखता ही नहीं। हाँ, फिर उतरते क्रम में फिर प्रतिपदा को एक ग्रास, द्वितीया को दो ग्रास, ऐसे करके क्रम से 14 के बाद 15, ऐसे जैसे तिथियां बढ़ती है उसी क्रम से चांद्रायण व्रत करने के लिए कहा। अब पुत्र की इच्छा, स्त्री के जीवन का सबसे बड़ी इच्छा होती है कि स्त्री पुत्रवती होती है तो बहुत प्रसन्न होती है। कारण क्या है कि गोस्वामी जी भी लिखते हैं, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुबर भगत जासुसुत होई। वही नारी पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। तो अगर पुत्र भगवान का जब भक्त होगा तो निश्चित ही वह विनयी होगा, विवेकी होगा और बड़ों की मर्यादाओं का पालन करने वाला होगा, वेदों की मर्यादाओं का पालन करने वाला होगा और उसके आयु विद्या यश और बल बढ़ेंगे। यह जिस माता ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया उसका जीवन सार्थक है। और नहीं तो कहा धर्मार्थ काम धर्मार्थ काम मोक्षाणाम यस्यै कोऽपि न विद्यते अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम्। जिस पुत्र के जन्म लेने से नहीं धर्म का पालन हो, धर्म रक्षा न करे, अर्थ धन भी न कमाए और मोक्ष तो वह प्राप्त ही नहीं कराएगा क्योंकि वो नालायक है। तो जैसे बकरे के गले में यहाँ दाढ़ी होती है उसका कोई प्रयोजन नहीं होता है, वैसे उस माता के पुत्र का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई हेतु नहीं है, वह माता को खाली दुख देने वाला माता के मल के समान ही है। तो ऐसे पुत्र से क्या फायदा, इसलिए माताओं को अच्छे पुत्र के लिए तपस्या करना चाहिए। आजकल बबलू बंटी डिम्पी पिंटी आ रहे हैं, रामकृष्ण नहीं आ रहे हैं, विवेकानंद नहीं आ रहे हैं, चाणक्य नहीं आ रहे हैं, सायण नहीं आ रहे हैं, आजकल बबलू बंटी और डिम्पी चिंकू पिंकू आते हैं। तो तपस्या करना चाहिए और तपस्या करने से माताओं में गुण आता है। जैसे खेत में कुछ दिन तक किसान छोड़ देते हैं कि खेत जब वैसा रहता है तो उसे अच्छे फसल पैदा होते हैं, ऐसे ब्रह्मचर्य आदि के पालन करने से, व्रत को धारण करने से माताओं में तेज आता है और उस तेज की वृद्धि होने से माता और पुरुष दोनों को ही ब्रह्मचर्य के पालन से, जो व्रत के पालन से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो दिति ने तो हजार वर्षों तक तपस्या किया, उसके बाद बतलाया गया उसे धर्म, भाई देखो आपका व्रत जो आपने जो कृच्छ व्रत किया है उस व्रत से जो आपका शरीर है वह बलिष्ठ हो गया है, क्योंकि सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन होता है सोता है देखे आगे क्या होता है। तो व्यक्ति जितना ही तप करता है उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ती है, और शारीरिक शक्ति जब बढ़ती है तो उसमें वो अच्छे चीजों को धारण कर पाता है। जैसे आज हम भूख सहन नहीं कर पाते, भूख सहन नहीं कर पाते, जहां तहां की वस्तुएं खा लेते हैं बीमार पड़ते हैं, और यदि हम में वो व्रत उपवास करने की क्षमता बढ़ेगी तो शरीर में क्षमता बढ़ती जाएगी, चिंतन शक्ति बढ़ेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इससे हम स्वस्थ होते हैं। तो इसलिए व्रत के प्रभाव से दिति जब पुष्ट हो गई तो कहा कि अब आप कृच्छ व्रत के प्रभाव से आपका शरीर पुष्ट हो गया है, अब आप जो दूसरा व्रत पुत्र के लिए करेंगी उससे आपकी संतान और भी उत्तम होगी। तो कश्यप ने जो व्रत बतलाया उस व्रत में बतलाया कि आपको इस व्रत को तपोवन में रह करके करना पड़ेगा, जंगल में रह करके करना पड़ेगा, और वृक्ष के मूल में बैठना नहीं होगा, वृक्ष के जड़ पर नहीं बैठना होगा, जल के भीतर आपको नहीं घुसना है, सूने घर में प्रवेश नहीं करना है। ये गर्भिणी की पूरी दिनचर्या बता रहे हैं इसके माध्यम से, कि भारतवर्ष की जो स्त्रियां हैं आज गर्भ के लिए बहुत लालायित लोग होते हैं महाराज श्री, जो लोग गर्भहंता होते हैं उन्हीं को गर्भ नहीं होता है, दूसरे जन्म में लिखा है, यह धर्मशास्त्र की बात है। और जो दीमक होता है उधई, उधई के मिट्टी पे पैर नहीं रखनी है, यह भी बतलाया, जंगल में रहना है उधई के मिट्टी पे पैर नहीं रखना है, उद्वेग नहीं होना चाहिए, मानसिक उद्वेग नहीं होना चाहिए, हमेशा स्वाध्याय इत्यादि शब्द ग्रंथों का होना चाहिए, सूने घर में नहीं रहना है, नख नहीं काटना है, राख के ऊपर नहीं बैठना है, राख की जो ढेर होती है उस पर नहीं बैठना है, भूमि में रेखाएं नहीं खींचनी है, और आलस्य हमेशा शरीर में न हो, आलस्य से भी वर्जित रहना पड़ेगा, हड्डी इत्यादि से स्पर्श न हो, पशु इत्यादि मर जाते हैं, और खड़ी होकर के जो अंगड़ाइया लेते हैं अंगड़ाई नहीं लेना चाहिए, बाल खुले होकर के घूमना नहीं चाहिए, और उत्तर की ओर मुंह करके ना बैठे और सिर को नीचे न करें, कठिन व्रत बतलाया। और नंगी होकर उद्वेग में पड़कर बिना पैर धोए आप न सोयो, बिस्तर पे सोने से पहले पैर धो करके आप शयन करना मना है, दिन में पैर धो भोजन से पहले, लेकिन शयन करने के पहले पैर नहीं धोना है, अमंगल युक्त वचन मुंह से नहीं निकालना है, जो कोई अनुष्ठान करते हैं ब्राह्मण अथवा यजमान उस समय उन्हें अपवित्र भाषण नहीं करना चाहिए, किसी को शाप नहीं देना चाहिए, नहीं तो जो अनुष्ठान का फल है वह शाप के साथ उस व्यक्ति को चला जाता है। मा दुष्ट भाषण आसंतु मा संतु पर निंदका दुष्ट भाषण नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो हमारे जो तेज हैं वह उसके साथ निकल जाते हैं। गुरुजनों के साथ आदर करना चाहिए, मतलब जो कुछ भी हो अपनी दिनचर्या पूर्णतया संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने व्रत बड़ा कठिन बतलाया, लेकिन दीति जी ने 9 महीने तक पूरे होते होते 3 दिन मात्र बाकी रह गए तो प्रसन्न हो गई कि ओ, अब हमारा व्रत सफल होने वाला है, हमको जो पुत्र मिलेगी। प्रजापत्य व्रत किया था, प्रजापति भगवान उसके ब्रह्मा जी देवता थे, इसलिए प्रजापति जिसके देवता हो उस व्रत को हम प्राजापत्य कहते हैं। ब्रह्मा जी का नाम पितामह भी है और प्रजापति भी है। पितामह इसलिए है कि उनसे जो 10 प्रजापति पैदा होते हैं सृष्टि के क्रम में, उन्हीं से सारी दुनिया पैदा होती है, इसलिए वो सबके दादाजी हुए, इसलिए उनको सब पितामह कहते हैं। और उनका नाम धाता भी है क्योंकि उन्होंने अपने ही ओज से सारी वनस्पतियों और औषधियों में अपना तेज भरा, धारण किया और पोषण किया, इसलिए उनका नाम धाता भी है। तो प्रजापति व्रत किया उसने तो बहुत भगवान प्रजापति ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए थे, उनका गर्भ व्यवस्थित चल रहा था, मात्र 3 दिन बाकी थे 9 महीने पूरे होने में। देवराज इंद्र घबरा गए कि ओ हो, ये तो बड़ा गड़बड़ होगा, ये यदि बच्चा ये पैदा हो जाएगा, इतनी ये तपस्या माता कर रही है, तब तो वो आएगा तो मुझे मार डालेगा, मेरा क्या होगा। तो उन्होंने विचार किया क्यों ना दीति माता के पास चला जाए और कहा जाए आप भी तो हमारी माता ही लगेंगी, आप इतना बढ़िया व्रत कर रही हैं, इसलिए मेरी इच्छा हो रही है कि मैं आपकी सेवा करूं। छल से इंद्र भगवान स्वर्ग से उतर करके जंगल में चले आए माता की सेवा करने के लिए। दीति जी इस बात को नहीं समझ सकी और उन्होंने खूब 2-3 महीने तक इंद्र ने सेवा किया दीति का। दीति को विश्वास भी हो गया, कोई बात नहीं है, ये सेवा कर रहा है, हमारा पुत्र ही लगेगा, क्या दिक्कत है, करते रहे। परंतु इंद्र को छल करना था, अपना काम बनाना था। एक दिन अपना पैर धोना भूल गई दीति माता और बाल खुले करके सिर नीचे की तरफ की और निद्रा उनको ऐसी आलस आई कि ऐसे पड़ गई और पैर खोल करके बैठ गई जो मना किया था ऋषि ने। उसी समय में उनकी अपवित्रता के कारण देवराज इंद्र उनके शरीर में प्रविष्ट कर गए और प्रविष्ट करके अंदर वज्र मारा। उधर में वज्र मारने से गर्भ नष्ट होता है, 7 टुकड़ों में गर्भ हो जाता है। 7 टुकड़ों में गर्भ हुआ तो बच्चे लगे रोने, 7 आकृति हो गई गर्भ की। जब 7 आकृति हुई तो जब बच्चा गर्भ में रो सब रोने लगे तो उन्होंने कहा मारुद मत रो मत रो, नहीं माना। फिर मारा तो 7 के 7-7 टुकड़े हुए तो वो 49 खंड हो गए। वही 49 जो है मरुत की उत्पत्ति हुई, मारुद करते रहे इसलिए उसका नाम मरुत पड़ा अपभ्रंश होकर के। वही 49 मरुत है, वही मरुत के अपत्य हनुमान जी महाराज हैं जिसे हम मारुति कहते हैं। मरुत के अपत्य होने से वायु देवता ने प्रवेश किया था, इसलिए मदद किया था अंजना के गर्भ में, इसलिए उनका नाम मारुति है। कहते हैं मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। भगवान हनुमान जी जो है यह मरुत के नंदन है। तो कहा कि मरुत की उत्पत्ति तो दीति के गर्भ से हुआ तो उन्हें दैत्य होना चाहिए, देवता कैसे हो गए, और फिर उनके पुत्र हनुमान जी। कहा कि नहीं, दीति ने जो व्रत किया था वह प्रजापत्य व्रत किया था, उसने ब्रह्मा जी की आराधना किया था। तो ब्रह्मा जी की आराधना, ब्रह्मा जी देवता थे। फिर दीति माता जब रोने लगी कि तूने इंद्र यह क्या किया, तूने अपने अर्थशास्त्र का सहारा लिया, यहाँ धर्म को गौण कर दिया तूने, क्योंकि स्त्री के गर्भ में जाकर के हनन करना यह सबसे बड़ा दोष है। स्त्रियों को मारना दोष है पहला, दूसरा दोष क्या है, तू गर्भ प्रविष्ट कर गया, तीसरा दोष जाकर के बालक पर मारा, भ्रूण हत्या एक तरह से तुझको लगेगा। उसने कहा कि भाई देखो, धर्म और अधर्म यह होता है कि धर्म की रक्षा के लिए यदि अधार्मिक व्यक्ति को कहीं भी मारना हो, अपने अर्थ की सिद्धि होती है, तो अपमान को सह करके भी धर्म की रक्षा के लिए हमें उस व्यक्ति के साथ वैसा प्रयोग करके उसे मार डालना चाहिए। नीति यह कहती है कि शत्रु चाहे कहीं भी हो, वहां हम धर्म नहीं देखेंगे। कारण क्या है कि धर्म की रक्षा के लिए हम अधर्म का मार्ग भी अपना करके उसे मारेंगे तो भी यह धर्म रक्षा ही है, नहीं तो वो बड़ा होगा तो अधर्म करेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि गदा युद्ध में दुर्योधन को इसके नीचे से मारो, कोई बात नहीं चलेगा। जब मारा तो पहुंच गए वहां पर वो बलराम जी, कहा तूने ये क्या कराया? कहा कि इतना अन्याय इसने किया है, कितनी बार पांडवों को लाक्षागृह में किया, जुआ खेला, इन लोगों को क्या क्या किया, द्रौपदी को नंगा करने का इन लोगों ने कुचक्र किया, आप एक भी बार नहीं आए और आप अभी आ रहे हो कि दुर्योधन को क्यों छल से मारा। तो धर्म की रक्षा के लिए यदि अधार्मिक व्यक्ति को मारा जाता है छल से भी, तो वह धर्म की रक्षा धर्म ही है, वह अधर्म नहीं है, ऐसा इंद्र ने दिति माता को समझाया। रही बात आपकी तपस्या की, तो आपके तपस्या के फल स्वरूप हम इस बालकों को अपने आप में मिला ले रहे हैं, देवगण में मिला ले रहे हैं, और आपने तपस्या किया है, तो उस तपस्या का फल यह है कि आप मेरी माता है, आपकी मैंने सेवा किया है, आप भी इस पुष्पक विमान पे चढ़ें और हमारे साथ स्वर्गलोक में चलें। तो माता को और मरुदगणों को भी लेकर के गए। इस प्रकार से जो मरुदगण हुए वह 49 हुए। इन 49 मरुदगणों की आज भी यज्ञ यज्ञ आदि में पूजन होता है, और वो असुरों के साथ नहीं रहे क्योंकि वो देवताओं के साथ मिल गए, तो देव योनि में मरुदगण हो गए, उनको वो असुर योनि में नहीं आते हैं।